Thank you, President Eyring. I love to hear my brethren and sisters speak. The Ten Commandments are fundamental to the
Christian. 10 आज्ञाएं मसीह और यहूदियों के विश्वासों के मूल आधार हैं। भविष्यवक्ता मूसा द्वारा परमेश्वर के इज़राइल के बच्चों को दी थी। इन में से पहली 2 आज्ञाएं सीधी हमारी आराधना और हमारी प्राथमिकता हैं। पहली में प्रभु आज्ञा देते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। शताब्दियों बाद जब यीशु से पूछा गया था कि व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है, उसने उत्तर दिया, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। दूसरी 10 आज्ञा विस्तार पूर्वक निर्देश देती है कि कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, उसके बच्चे के रूप में जीवन को पहचानने की हमारी परम प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश और या पृथ्वी के जल में है। आज्ञा तब जोड़ी गई, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, या तू बातें पूरे समय के लिए मूल श्रेष्ठ हैं। यहोवा समझाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो कोई मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा क्या करता हूँ। जलन का अर्थ है प्रकट करना। इसका इब्रानियों में वास्तविक अर्थ है भावुकता से अधिक अधिकार करना और गहराई से महसूस करना। हम परमेश्वर को ठेस पहुंचाते हैं जब हम किसी दूसरे ईश्वर की सेवा करते हैं। जब हमारे पास अन्य प्राथमिकता होती है, सांस्कृतिक और पारिवारिक समस्याएं, राजनीतिक सुधार, पेशे की प्रेरणा, सात सम्मान की संपत्ति, मनोरंजन करने का व्यवसाय, शक्ति, ऊंचा स्थान और प्रतिष्ठा, यदि इनमें से कोई भी उदाहरण हम में से किसी पर लागू नहीं होता है, हम दूसरों को ऐसा करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। सिद्धांतों की महत्वता किसी भी व्यक्तिगत उदाहरण से अधिक है। सिद्धांत यह नहीं है कि हमारे पास दूसरी प्राथमिकताएं हैं कि नहीं। दूसरी आज्ञा के द्वारा प्रश्न आता है, हमारी आखिरी प्राथमिकता क्या है? क्या हम सेवा की प्राथमिकता की ओर या परमेश्वर के आगे ईश्वर की ओर झुके रहे हैं जिनकी हम उपासना करने का अभिनय करते हैं? क्या हम उद्धारकर्ता का अनुसरण करना भूल गए हैं, जिसने सिखाया था कि यदि हम उसे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को पालन करें? यदि ऐसा है तो हमारी प्राथमिकता ऊपर से नीचे हो जाएगी। आत्मिकता, उदासीनता और अशिष्टाचार की भूख के द्वारा जो आज के दिन में बहुत प्रचलित है। अंतिम दिनों के संतों के लिए परमेश्वर की आज्ञा उसके बच्चों के लिए उद्धार की महान योजना परमेश्वर की योजना से उस पर आधारित होती है। इन योजनाओं को कभी भी महान आनंद की योजना भी कहते हैं। परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमारी भविष्यवक्ता का भाग्य बदलता है। हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं और हम कहाँ जाना है। उद्धार की योजना का उद्देश्य और नश्वरता का वाक्य करती है। परमेश्वर की आज्ञा एक उदारता के लिए आवश्यकता, नश्वरता और अनंत परिवारों के अहम भविष्य भूमिकाएं शामिल हैं। यदि हम अंतिम दिनों के संत जिन्हें यह ज्ञान दिया गया है, इन योजनाओं के साथ हमें अपनी प्राथमिकता की स्थापना नहीं करती है, दूसरे ईश्वरों की सेवा करने में हम खतरे में होते हैं। परमेश्वर की योजना के ज्ञान उसके बच्चों के लिए अंतिम दिनों के संतों और को विवाह और पारिवारिक का अनोखा दृष्टिकोण से देखने को दिया है। हम सही में जानते हैं कि परिवार का केंद्र गिरजाघर है। हमारा धार्मिक ज्ञान स्वर्गीय माता पिता के साथ शुरू होता है और हमारी उत्तम प्रेरणा अनंत उत्कृष्ट के पूरे होने से होती है, जैसे हम जानते हैं सिर्फ पारिवारिक संबंधों में ही संभव होती है। हम जानते हैं कि परमेश्वर की योजनाओं को पूरे करने के लिए एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह करना जरूरी है। विवाह का नश्वर जन के लिए सहमत है। हम विवाह को देखते हैं परमेश्वर की योजना, बच्चों को जन्म देने और पालन पोषण करने का भाग और पवित्र कर्तव्य भी है। हम विश्वास करते हैं कि आखिरकार पृथ्वी पर स्वर्ग में हमारे बच्चों की हमारा खजाना और हमारी संपत्ति है, क्योंकि जिस परिवार की अनंत भाग्यशाली भूमिका के बारे में हम समझते हैं, हम दुखित होते हैं कि पश्चिम देश के जन्म और विवाह के आंकड़ों में की सभी सीधी तरफ गिरावटें वहां पर जहां की ऐतिहासिक संस्कृति मसीही और यहूदियों की है। जिम्मेदार सूत्र निम्नलिखित रिपोर्ट देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अब इतिहास में सबका सबसे कम जन्म देने का आंकड़ा है, और यूरोपियन यूनियन राष्ट्र और अन्य प्रगतिशील देश अपनी आबादी के स्तर को कम बनाए रखने के लिए कम जन्म देने का है। यह संस्कृति और यहाँ तक कि राष्ट्रों को प्रति डरावना है। अमेरिका में 18 से 29 की आयु के युवा लोगों का प्रतिशत जो शादीशुदा है 1960 में घटकर 59% और 2010 में 20% हो गया है। पहले विवाह के लिए बीच की आयु अब इतिहास का उसका उत्तम स्तर में है, 26 महिलाओं के लिए और लगभग 29 पुरुषों के लिए। कई देशों और संस्कृतियों में विवाह विवाहित माता पिता और बच्चे एक पारंपरिक परिवार विशेष रूप में आता है, ना कि नियम से। शादी और बच्चे पैदा करने के जगह पर भविष्य सुवारना में कई युवतियों के चुनाव में बढ़त हुई है। पिता की भूमिका और दृष्टिकोण को समझाने में गिरावट आई है। इस प्रकार प्रवृत्ति के मध्य होना हमारे लिए विचारने योग्य है। हम सचेत हैं कि परमेश्वर की योजना उसके सभी बच्चों के लिए है, और परमेश्वर अपने सही बच्चों से हर जगह प्रेम करता है। मॉर्मन की पुस्तक का पहला अध्याय घोषित करता है कि परमेश्वर की शक्ति और उदारता और दया सारे लोगों के ऊपर है। आगे का अध्याय घोषित करता है कि उसने यह सभी का उद्धार बेमोल दिया है, और लेकिन एक मनुष्य को समान रूप से अधिकार है, रोका किसी को नहीं गया है। फलस्वरूप धर्मशास्त्र सिखाता है कि हम दया और दानशीलता करुणा और सभी मनुष्यों के प्रति जिम्मेदार हैं। हम सभी लोगों के धार्मिक विश्वासों का आदर भी करते हैं, उन बढ़ते आंकड़ों का भी जो परमेश्वर पर ढोंग करके विश्वास नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर द्वारा चुनाव करने की शक्ति देने से कई हमारे विश्वास के विरुद्ध हैं, परंतु हम आशावादी हैं कि दूसरे भी उतनी ही इज्जत और आदर हमारे धर्म को करेंगे, और समझने के लिए अन्य कुछ लोगों से हमारा विश्वास कुछ चुनाव और आदतें उनसे विभिन्न है। उदाहरण के लिए हम विश्वास करते हैं कि उधार की योजना उसका एक विशेष भाग है। परमेश्वर एक अनंत स्तर बनाया है कि यौन संबंध सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री के बीच ही में ही होना चाहिए जो कि विवाहित हों। परमेश्वर ने अति महत्वपूर्ण उत्कर्ष की शक्ति को अपने बच्चों को नश्वर जीवन की सृष्टि करने के लिए दी है। यह परमेश्वर द्वारा आदम और हव्वा को आदेशानुसार प्रयोग करने के लिए दी गई थी, परंतु अन्य दूसरी आज्ञाओं का दुरुपयोग से रोकने को भी दी गई थी। सदाचार के नियम पर जो देकर हमें हमारे परमेश्वर के जनन की शक्ति की योजना के उद्देश्य को समझते हैं। विवाह के बंधन के बाहर में एक पुरुष और एक स्त्री सारी जनन की शक्ति का इस्तेमाल करना और परमेश्वर की उत्कर्ष की योजना में विपरीत जाना उसके बच्चों के लिए एक मूल का दूसरा पाप होता है। हमारा सदाचार के नियम से जोड़ने की महत्वपूर्णता हमारे विवाह की आचरण प्रणाली के प्रति वचन वृद्धा को समझाता है, जो कि वास्तव में आदम और हव्वा के साथ था और युगो युगो तक लगातार चलता रहेगा। जैसे परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियों के बीच जनन के संबंध आचरण प्रणाली के लिए और उनके बच्चों के पालन पोषण करने के लिए भाग्यवश दूसरी संस्थाओं में से भी कई लोग ग्रहण का विवाह की प्रकृति और महत्व पर हमारा समर्थन करते हैं। कुछ धर्मों के संतों के आधार पर और अन्य समाज के लिए उत्तम क्या है के आधार पर करते हैं। परमेश्वर की योजना का हमारा ज्ञान उसके बच्चों के लिए समझाता है हम क्यों कर दुखी होते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों का जन्म विवाह के बाहर हो रहा है। वर्तमान में 41% सभी संयुक्त राष्ट्र में हैं और बिना विवाह के जोड़े एक साथ रहने की संख्या बढ़कर पिछले 50 सालों में हुई है। 50 साल पहले सिर्फ छोटा सा प्रतिशत ही प्रथम विवाहों में ही रिश्ते बनाते थे। अब 60% विवाहों से पहले ही रिश्ते बनते हैं और इन सब की मान्यता बढ़ती जा रही है, विशेषकर किशोरावस्था के बीच। हाल की सर्वे के आंकड़ों में पाया गया है कि 50% किशोरावस्था युवा के कहा है कि विवाह के बाहर बच्चे पैदा करना योग्यतानुसार सजीवन स्तर का है। यहाँ पर यौन संबंधित और अनंत प्राकृतिक और विवाह और बच्चा जन्म जनने के उद्देश्य परमेश्वर के आदेशनार के विरुद्ध में कानूनी और नियम परिवर्तन करने के लिए कई राजनीतिक और सामाजिक दबाव डाले जाते हैं। यह कई दबाव कई शहरों और राष्ट्रों में समलैंगिक विवाह की मंजूरी दे चुके हैं। अन्य दबाव लिंग या समरूप में जिससे पुरुष और स्त्री के बीच के भेदभाव से परेशान है, जो कि परमेश्वर के महान आनंद की योजना की स्थापना के लिए विशेष है। परमेश्वर की योजना और उसके सिद्धांत हमें अनंतता के दृष्टिकोण से देखने की हमें समझ देते हैं, जो कि हमें ऐसे व्यवहारों की अपेक्षा करने की स्वीकृति नहीं देते हैं। यह ऐसा कानूनों ने न्याय ढूंढने की जो ऐसा करने की अनुमति देते हैं और अन्य संस्थाएं जो कि अपनी नीतियों और यहाँ तक सिद्धांतों में तब्दीलती ला सकते हैं। हमारी नीति सच्चाई पर निर्धारित होती है परमेश्वर के अपरिवर्तनीय पहचान की। हमारा 12 विश्वास के अनुसार आज्ञा मानना है आदर करना और कानून का समर्थन करना। हमारा भरोसा सभ्य अधिकार के विश्वास में है, परंतु जिसे परमेश्वर ने अनैतिक घोषित किया है उसे इंसान का कानून नैतिक कर सकता है। वचन वृद्धा हमारी प्राथमिक उच्चतम जिम्मेदारी है। परमेश्वर से प्रेम और सेवा करो। जरूरत है हमारे स्तर के व्यवहार के उदाहरण के लिए हम आज भी विचार न करना पवित्र आज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जब राष्ट्र के कानून में यह देश में हम जहां हम रहते हैं अनैतिक यौन संबंध अब पाप नहीं है, समानता के से कानून वैध कर दिया है कि जैसे समलैंगिक विवाह कहते हैं के साथ भी परमेश्वर के विवाह के कानून और उनकी आज्ञाओं को ना बदलने हमारे उन आदर्शों पर विचार है। हम अब भी अनुबंध और अंतर्गत हैं। हमारे परमेश्वर से प्रेम करते रहना और उनकी आज्ञाओं को मानने का दृढ़ संकल्प से जोड़े रहना, अन्य ईश्वरों और प्राथमिकताओं की सेवा करने से दूर रहना है, चाहे हमारे समय या स्थान में से कितने भी मशहूर क्यों ना हो। इस संकल्प में हमें गलत समझा जा सकता है और हटी होने के दोषी होकर नुकसान उठाकर पश्चाताप झेलते हैं। यह हमारे धर्म के स्वतंत्र अभ्यास करने के से आक्रमण झेलने के लिए खड़े हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो मैं सोचता हूँ हमारे पास याद करने के लिए प्राथमिकताएं होनी चाहिए परमेश्वर की सेवा करने की, और जैसे हमारी पर्थ प्रदर्शनों ने बढ़कर दी हम अपनी हाथ गाड़ी को खींचकर कुछ धैर्य के साथ जो उन्होंने दिखाया था। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन की एक शिक्षा इस परिस्थिति पर लागू होती है और इस सम्मेलन में 27 साल पहले उन्होंने गर्व से घोषणा की थी, हम सबके पास आम राय पर विरोध करने का साहस नियम पर खड़े होने का साहस और सहस समझौते ना करने का परमेश्वर की अनुमति के नुकसान लाता है। साहस जीने की नैतिकता और आकर्ष बन गया है जब यह सिर्फ शूरवीर की तरह मरने के इच्छुक हों परंतु शीलनत की लगान से हों। इस डरपोक मनोबल वाला जो करने से डरता हो जिसे वह समझाता है कि सही मार्ग क्या है क्योंकि दूसरे समर्थन नहीं देंगे या मजाक उड़ाएंगे। याद रखें कि सभी मनुष्य पास उनका भय है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम नश्वरता की अस्थाई चुनौतियों के कारण हमें महान आज्ञाओं और प्राथमिकताओं को भूल न जाएं जो हमें हमारे सृष्टिकर्ता और हमारे उद्धारकर्ता ने दी हैं। हमें अपने हृदय और अधिक संसारिक बातों में और मनुष्य की प्रशंसा में नहीं लगाना चाहिए जिनकी हम हमारे अनंत भाग्य के दृष्टिकोण को खो दें। हम जो परमेश्वर के सच्चे बच्चों की योजना जानते हैं, हम जो अनुबंध बनाकर उसमें भाग लेते हैं, सीधी साफ जिम्मेदारी है। हमें कभी भी उसके सर्वोत्तम कामनाओं को नहीं भटकना चाहिए जिसका अनंत जीवन प्राप्त होता है। हमें अपनी प्राथमिकताएं कम नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर पिता और उसका पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह सामने ना कोई अन्य ईश्वर है और ना कोई प्राथमिकता सेवा करने के लिए। परमेश्वर हमारे इस प्राथमिकता को समझाने मदद करे और दूसरे भी समझें जैसे हम उसे समझदारी और प्रेम से योजना जारी रखते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन।